और दबकर बैठ जाएं। सभी आगे आगे बहुत जगह है, थोड़ा सा
सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
की।
हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दृष्टि की निर्मलता अनिवार्य है, इस पर विचार करना शुरू किया था। दृष्टि की निर्मलता सच्ची श्रद्धा से आती है, या ये कहें कि सच्ची श्रद्धा दृष्टि की निर्मलता से आती है, दोनों चीजें एक साथ ही होती हैं। जैसे जैसे हमारे मन में जो वस्तु स्वरूप है या कि जो संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता है, उसका जैसे जैसे हमारे जीवन में अनुभव होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है। और ये तब होता है जबकि हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हमने पिछले दिनों सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझ करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना शुरू किया है, उनसे हमें एक दृष्टि मिलना शुरू हुई है। हमारे भीतर उस दृष्टि के मिलने से बहुत सारी गुणवत्ता धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो प्रकट भी हो रही है। हमने अपने जीवन में हमेशा सच्चे रास्ते पर चलने से पहले संदेह ही किया है। हमने कभी संसार के रास्ते पर चलते समय किसी से ये नहीं पूछा कि भाई इस रास्ते पर चलकर मैं कहां पहुंचूंगा, पहुंचूंगा कि भी नहीं पहुंचूंगा, ये रास्ता ठीक है या नहीं है। हम बहुत जल्दी संसार के रास्ते पर बिना किसी संदेह के चल पड़ते हैं। मुश्किल तो हमें सिर्फ तब आती है जब हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, तो ढेर सारी बातें हमारे मन में संदेह उत्पन्न करती हैं कि भाई पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और यहाँ इस मार्ग पर चलने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो फिर उस सुख के स्थान को क्या भरोसा कि वहां सुख मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे बहुत सारे संदेह। लेकिन अब जैसे ही दृष्टि निर्मल हो रही है, वैसे वैसे हमारे भीतर से वो संदेह मिट रहे हैं। अभी तो हमें संसार के 100 कामों में ही रुचि मालूम पड़ती थी, उसी में सुख मालूम पड़ता था, सो हम सुबह से शाम तक उसी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लगे रहते थे। अब तो थोड़ा हमने अपना मन बदल लिया है, दृष्टि निर्मल होने से उन सुखों को हम सच्चा सुख नहीं मानते हैं, वो तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठ करके, और जब हम अपने आत्म सुख को प्राप्त करेंगे वो सच्चा सुख है। ये सुख तो बहुत क्षणिक है, ये तो बहुत पराधीन है, इसके पीछे पीछे तो दुख भी मेरे को मिलता है, मैं तो उस सुख को प्राप्त करने की अपने भीतर सामर्थ्य रखता हूं जिसके पीछे कोई दुख नहीं है, ऐसी निकांक्ष हमारी दृष्टि। इतना ही नहीं, जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनके बाह्य किसी भी उपलब्धि को नहीं देखूंगा, उनके बाह्य रूप रंग को नहीं देखूंगा, उनकी शरीर की मलिनता से मैं घृणा नहीं करूंगा। इस तरह की दृष्टि भी हमारे भीतर उत्पन्न हो जानी चाहिए, धीरे धीरे होती है। और सैकड़ों रास्ते हैं, सब अपने अपने रास्ते को सच्चा कहने वाले लोग भी हैं, विभिन्न प्रकार के मत मतांतर हैं। मैं तो उन सब में नहीं उलझता, मैंने तो सिर्फ वीतरागता को ही मार्ग माना है, सो अपने उस वीतरागता के मार्ग पर चलते हुए। और मैं अन्य किसी की न प्रशंसा करता हूँ न निंदा करता हूँ, मैं तो सिर्फ अपने रास्ते पर चुपचाप चलता, ऐसी मेरी दृष्टि मुझे प्राप्त हो गई है। इतना ही नहीं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़कर मैं देखता हूँ कि अभी दोष देखने की प्रवृत्ति तो मेरी गई नहीं है। ये जो दोष देखने की प्रवृत्ति है वो मुझे अब अपने आप में बदलनी पड़ेगी। उस दोष देखने की प्रवृत्ति के चलते मैं गुण नहीं देख पाता हूं, जिससे कि मेरी हानि ही होती है। ऐसा विचार अब हमारे मन के भीतर आना चाहिए। कम से कम जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, जो मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके भीतर जो कमियां हैं, उनके भीतर जो देह दोष हैं, उन दोषों को तो हम ढकने की कोशिश करें, क्योंकि उन दोषों को उजागर करने से उस सच्चाई के मार्ग में ही दोष लग जाएगा। जबकि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला शक्त जनाश्रयाम वाचताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्ति उपगूहनम्। मेरी दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए कि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, वह जो मोक्ष का मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, जिस पर कि मैंने चलना शुरू किया है, वह तो अत्यंत विशुद्ध है। लेकिन बालाशक्त जनाश्रयम, अज्ञानी और अशक्त लोगों के द्वारा कुछ दोष उस मार्ग पर चलते हुए देखने में आ जाते हैं, मैं क्या करूं? हो सके तो यत् प्रमार्जन्ति, उनका प्रमार्जन करना, उन्हें उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, उन दोषों को तो दूर करने की आवश्यकता है, उन दोषों की निंदा करने की आवश्यकता है। इतना विचार हमारे मन में, ये दृष्टि हमारे मन में उत्पन्न होनी चाहिए। भाई, दो तीन चीजें हैं, क्योंकि संस्कार है दोष देखने का, और वो भी दूसरे के। अपने दोष देखने का संस्कार होता तब भी काम बन जाता, लेकिन आदत में तो दूसरे के दोष देखने का संस्कार है। तब सबसे पहला अभ्यास तो ये करना पड़ेगा कि मैं दोष अपनी तरफ से देखने का प्रयत्न ना करूं। दोष दिख जाने पर इतना ही प्रयत्न करूं कि उसे कहूं नहीं। अगर कदाचित मैंने चेष्टा नहीं की दोष देखने की, लेकिन दोष देखने और सुनने में आ गए, तब मैं क्या करूं? तब मैं उनको डिंडोरा ना पीटूं। और अगर मेरा बहुत मन उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले के दोषों को दूर करने का मेरा मन है, प्रमार्जन करने का है, तो उसी से मिलने पर एकांत में कह दूं कि भगवान, यह जो चीज आपके भीतर है, यह मुझे कुछ ठीक नहीं जान पड़ती। आपकी दृष्टि में हो सकता है ठीक हो, मेरी दृष्टि में अल्पज्ञता के कारण यह चीज ठीक नहीं जान सक पड़ती। आप मुझे जरा इस चीज को बता देवें, यह भाव, या फिर जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले उस साधक के निर्देशक हैं, गुरु हैं, उनके पास जाकर के कह सकते हैं कि भगवान, ऐसी ऐसी चीज मुझे देखने में आई, वह तो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले में शोभा नहीं देती है, इसलिए आपसे निवेदन किया, यदि वो चीज दूर हो जावे तो बात अच्छा रहे। मेरे मन में एक ही भाव है, दोष दो दृष्टि से देखे जाते हैं, एक तो दूसरे को नीचे गिराने की दृष्टि से दोष देखे जाते हैं, एक दूसरे के दोषों को दूर करके उसे ऊंचे उठाने की दृष्टि से देखे। तो अब मेरी दृष्टि मुझे परिवर्तित सिर्फ इतना ही करना है कि दोष तो देखूं नहीं, दिख जाए तो कहने का उपक्रम ना करूं, कहने का बहुत मन हो तो सिर्फ दृष्टि इतनी ही रहे कि मुझे वो दोष दूर करके उस व्यक्ति को ऊंचा उठाना है। मैं कह भी रहा हूं दोष तो नीचे गिराने के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे कि किसी डॉक्टर के यहां कोई पेशेंट जाता है, भाई कितना भी बड़ा रोग व्याधि क्यों ना हो, लेकिन क्या कभी किसी डॉक्टर को आपने माइक लगा करके चौराहे पर यह कहते देखा है कि देखो तो इनके लक्षण टीबी हो गई इनको, कैंसर हो गया इनको, ऐसा कहता क्या? वो पेशेंट भी पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या हो गया मुझे, कहते कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, दवाई खाओ, घबरा ना जाए। अब कुछ ना कुछ तो पाप कर्म का उदय है, कुछ ना कुछ तो कमी है जिसकी वजह से कि व्याधि हो गई, पर उसके उसके दूर करने का उपाय करता है वो, उसका डिंडोरा नहीं पीटता है, उन दोषों को ढक लेता है, और जब दो चार दस दिन में थोड़ा रोग काबू में आता है तब धीरे से कहता कि देखो खान पान में सावधानी रखो, उसकी वजह से ये हो गया था, तुम्हारी गलती रही। ऐसी ही क्या हमारी भी दृष्टि है क्या? अपने और दूसरे के बारे में हमारी दृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए, दूसरे के बारे में उसको उसके दोषों को ढकने और उसके गुणों को प्रकट करने की, और अपने बारे में अपने गुणों को ढकने और अपने दोषों को प्रकट करने की दृष्टि। हम क्या करते हैं, हम तो इतना ही करते हैं कि अपने गुण सुनना चाहते हैं, दूसरे के दोष सुनाना चाहते हैं। ये हमारी अपनी प्रवृत्ति है। अब इसके चलते दृष्टि निर्मल कैसे होगी? क्योंकि परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणों छादनोद भावेने च नीचैर गोत्रस्य। जब जब मेरे मन में अपनी आत्म प्रशंसा, अपने विद्यमान और अविद्यमान गुणों की प्रशंसा का भाव आता है, और दूसरे के अंदर विद्यमान अविद्यमान दोषों को कहने का मन होता है, तब तब मुझे नीच गोत्र का ही बंध होता है, और नीच गोत्र का बंध तो मिथ्यात् गुण स्थान में होता है, सम्यक दृष्टि को तो सिर्फ उच्च गोत्र का ही बंध होता है। इसके मायने है कि जब जब मेरा मन दूसरे की निंदा करने का, उसके विद्यमान दोषों की भी निंदा नहीं करना, अविद्यमान की तो कर रहे ही नहीं, बताइए आप, अविद्यमान और विद्यमान सदसद गुणोच्छादनोज, हो सके तो विद्यमान अविद्यमान दोषों को दूसरे के ढक लेना, उन्हें उजागर नहीं करना, ये दृष्टि की निर्मलता है। तब जाकर के हमारे अंदर और जीवन अच्छा बनना शुरू होगा। अभी तो अपने हाथ से ही हम दूसरे के दोष देख करके अपने मन को ही दोषी बना लेते हैं। भैया दूसरे को बुरा कहने वाला कभी भला नहीं हो सकता, ये तय है, दूसरा बुरा है या कि नहीं ये तो बात की बात है। ये विचार हमारे मन में आना चाहिए, दृष्टि हमारे मन में आनी चाहिए। इसीलिए मुझे कई बार लगता है कि जो लिखा है कि बहुत दुर्लभ है दृष्टि की निर्मलता, आज के समय में सम्यक दर्शन होना, तो सचमुच हजार पीछे एकाध कोई की ऐसी दृष्टि होगी, बाकी तो बहुत मुश्किल। अपन सबके बूते की बात नहीं लगती है, जरा जरा सी चीजें जहां कुछ अच्छा है वो अच्छा कम दिखता है, वहां कुछ एकाध कुछ गड़बड़ होता वो पहले दिख जाता है। किसी के भीतर 100 अच्छाइयां हैं वो नहीं दिखती, एक बुराई है उसको इतना बड़ा कर देते कि उसके नीचे 100 अच्छाइयां भी खो जाती, जबकि होना ये चाहिए था कि किसी के भीतर एक भी अच्छाई है तो उसको इतना बड़ा कर देते कि उसके नीचे उसकी 100 बुराइयां भी ना दिखाई पड़े, और धीरे धीरे दिखाई ना पड़े का मतलब ये नहीं कि उसी में बनी रहे, नहीं तो उसका और कल्याण हो जाएगा। अगर आप ऐसा अर्थ ले लेंगे कि दूसरे में दोष है, सूर्यन दो महाराज कह रहे थे कि नहीं अपन को क्या करने, नहीं, दूसरे के दोषों को उजागर नहीं करना, लेकिन दूसरे के दोषों को प्रमार्जित करने का भाव तो रखना कि उसमें से वो दोष निकल जाए जिससे कि वो निर्मल हो जावे। मुझे उसके दोष उजागर करके उसे नीचे गिराने का कोई मेरा भाव नहीं है, लेकिन उसके दोष उसमें से निकालने का जरूर मेरे मन में भाव है। और निकाल पाऊं तो ठीक है, नहीं निकाल पाऊं तो उसको लेकर के मैं चिंतित भी नहीं हूं। इस तरह यदि हमारे मन में और दृष्टि में ये चीज आ जावे तो इसी का नाम है उपगूहन अंग। ये एक गुण है सम्यक दृष्टि का, सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, एक सम्यक दृष्टि ही इस चीज को कर पाए। दूसरे के दोष देखने से होता यह है कि फिर हमें उसके गुण देखने की आदत नहीं रहती, कहीं भी फिर गुण नहीं दिखते हैं जब हम दोष देखने की दृष्टि बना लेते। दूसरी चीज, अपने दोष फिर नहीं दिखते जब हम दूसरे के देखना शुरू कर देते। अपने तो गुण ही गुण दिखते, देखो वो ऐसा करते मैं तो नहीं करता, देखो वो ऐसा करते मैं तो ऐसा नहीं करता। अब हम अपने आप को जो है गुणवान मान बैठते, धोखा हो जाता। अपने गुणवान होने का और दूसरे के दोषी होने का ये बहुत बड़ा हमारा लॉस है, ये बहुत बड़ी हमारी हानि हो जाती। और अपन ध्यान रखें कि जब भी अपन दूसरे के दोष देखते हैं तो हम स्वयं दोषी हो जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक कटनी में पंडित जी थे, आचार्य श्री के सानिध्य में उन्होंने संलेखना भी करी, कुंडलपुर में बड़े पंडित जी कहलाते थे। तो उनके जीवन की घटना उनने सुनाई थी आचार्य श्री को, बहुत पहले सन 80-81 हम लोग वहीं बैठे थे सुन रहे थे। बोले महाराज, छोटे छोटे बच्चे भी और अपन को कई बार कैसा ज्ञान दे देते हैं। अब देखो वो घटना की जगह दूसरी और याद आ गई। अब पहले वो वाली सुनाई देते हैं, ये वाली बात भी सुना। वो तो इंदौर की है, अपने पास में ही इंदौर, मैं जब चतुर्मास कर रहा था उसी समय की। छोटे बच्चों की बात आई तो याद आ गई, एक दादी ने मुझे सुनाई थी, वो अभी कल आकर के भी गई थी। उनकी 4 साल की जो बेटी की बेटी, क्या कहलाएंगी, नातिन हुई, जो भी है नातिन हुई, तो वो बोले कि महाराज, हम एक ठेले वाले को घर के सामने खड़े करके और उससे सब्जी ले रहे थे और हमने उससे मूली हाथ में लेके उसका भाव पूछा कि कितने की मूली दे रहे, तो बस वो तो 4 साल की वो जो नातिन थी वो बस मेरे आसपास धोती पकड़ के और चक्कर लगाने लगी। दादी दादी जो है जमीकंद खाती, दादी जमीकंद, महाराज कह रहे थे कि जमीकंद नहीं खाना चाहिए। आप तो मचा दिया उसने पूरे में, बोले कि मेरे हाथ से वहीं वो छूट गई मूली और मैंने सौगंध ली कि अब आज से मूली नहीं खाऊं, इसने तो मेरे लिए। दोष इस तरह से दिखाए जाए कि दूसरा उन दोषों से मुक्त हो जावे, मैं कहना ये चाह रहा हूं। उतने छोटे से बच्चे ने भी कहकर के दोष से मुक्त कर दिया। और ऐसे ही पंडित जी सुनाते हैं आचार्य महाराज को कि छोटे छोटे बच्चे भी कितनी बड़ी बात कह देते हैं, कैसी दृष्टि हमारे भीतर दे देते हैं। बोले क्या हुआ, सब घर के बच्चे और शोरगुल कर रहे थे, हमारा सामायिक का समय हो गया, तो हमने सबको बुलाया, देखो अब हम सामायिक करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, जो भगवान का ध्यान करते वही भगवान बनते हैं, इसलिए तुम लोग अब शोरगुल हल्ला वल्ला मत करना, शांत बैठना। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने सुना, मजा लिया, चल दिया, देखो बैठने दो बाबा जी को, अपने को क्या, जब बैठ जाएंगे तो फिर देखेंगे। बाबा जी जैसे ही जो है पंडित जी ध्यान में बैठे सामायिक में, और बच्चों का खेल शुरू, अब क्या करोगे आप, अब तो कुछ बोल नहीं सकते, आप अपनी सामायिक करो। सामायिक पूरी होने के बाद बोले, मेरे मन में आया कि इनको जरा डांटू, मैंने जब समझा दिया था तो मेरी बात क्यों नहीं मानी, तो सबको बुलाया, क्यों, हमने तुमसे कहा था कि जब हम सामायिक कर रहे हैं तब तुम हल्ला वल्ला मत करना और तुम इतना शोरगुल कर रहे थे। तो एक उसमें से बोलता है, बोले हमारे चक्कर लगाते हुए कि दादाजी तो भगवान बन ही नहीं सकते, दादाजी तो भगवान बन ही नहीं सकते। हमने कहा ये और एक नई बात, क्या हुआ तेरे को, किसने बताया ये। बोलते दादाजी आप भगवान इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि सामायिक के समय आपको ये कैसे दिखा कि हम शोरगुल कर रहे थे, आप अपनी सामायिक नहीं कर रहे थे, इसका मतलब। देखो हम अगर दूसरे के दोष देखने गए हैं तो हमारी गलती भी पकड़ में आ गई, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सामायिक कर रहे हैं या बच्चों को देख रहे हैं? भाई जब जब दूसरे के दोष देखते हैं, हम स्वयं भी अगर अपने भीतर देखें तो उस दोष से ग्रसित हम भी होते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि दूसरे को गिराने की दृष्टि से कभी दोष न देखें, बल्कि अगर दोष दिख जावें तो उनको परिमार्जित करने के लिए निरंतर हम चिंतित रहें कि क्या करूं, कैसे करूं, जिससे कि इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के ये दोष निकल जावें, वो इन दोषों से मुक्त होकर के इस मोक्ष मार्ग पर अच्छे से चले और अपना कल्याण करे। इस तरह यदि हम अपनी दृष्टि बनाते हैं तभी हम अपने जीवन को भी और गुणवत्ता से सजा सकते हैं, वरना तो हम दूसरे के दोष देख करके, क्या हमको इसलिए यहां पर जन्म मिला है कि हम दूसरे के दोष देखें, दूसरे का हिसाब किताब रखें क्या? जस्ट बी नॉट। हमको निर्णायक बना के तो भेजा नहीं गया यहां पर कि हम दूसरे का निर्णय दें। ये बात हमारे मन में बहुत स्पष्ट आनी चाहिए। जब जब भी हम दूसरे के दोष देखें तो हमारे मन में आ जाए कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, मेरी दृष्टि में क्यों ये आ रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो फौरन अपना एनालिसिस करें कि किस अपेक्षा से आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि मोक्ष मार्ग में ऐसा दोष शोभा नहीं देता। अच्छा ठीक, तो फिर आप क्या करेंगे, निंदा करेंगे उसकी? नहीं, निंदा तो ना करूंगा, उसका उपगुहन ही करूंगा, उस दोष को उजागर नहीं होने दूंगा, ढकूंगा, और हो सकेगा तो अवसर आने पर अवसर की प्रतीक्षा करूंगा कि क्या अवसर आए, कैसे मैं उस दोष को उससे दूर कर सकूं। जिन दत्त सेठ ने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया था जिसमें कि रत्नों की प्रतिमा स्थापित की है, घटना आती है, और वो रत्नों की प्रतिमा इतनी दैदीप्यमान थी कि रात के अंधेरे में भी और उसका प्रकाश मंदिर में फैल जाता था। एक चोर के मन में आया कि इसको मैं यहां से चुरा के ले जाऊं, अब चुराऊं तो कैसे चुराऊं, काफी प्रहरा है, उसके बीच में से निकलना बहुत कठिन है। तो उसने उपाय क्या किया कि जिन दत्त सेठ तो मुनि महाराज और त्यागी व्रति के बड़े भक्त हैं, तो उसने जो है ब्रह्मचारी का वेश धारण कर और सेठ जी के पास आकर के और अपनी वक्तित्व कला से उनका मन जीत लिया। सेठ जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी बड़े ज्ञानवान हो आप, त्यागी तो हो ही, त्याग के साथ तो ज्ञान है, अगर तो सोने में सुहागा हो गया, आप तो पधारो, हमारे यहीं रहो, मंदिर में पूजा पाठ करना, धर्म ध्यान करना, हमारे ही यहां पर भोजन स्वीकार करना और हमें दो बातें धर्म की सुनाना, हमारा भी कल्याण होगा। ठीक है, वो तो यही चाह रहा था, सो वहीं पर जो है रहने लगा। और एक दिन जो है सेठ जी ने कहा कि देखो भाई, अब तो तुम इतने वर्ष हो गए यहां रहते, अब मैं जरा काम से मुझे जाना है, मंदिर तुम्हारे जिम्मे छोड़ के जाता हूं, तुम संभालना और मैं लौट के आऊंगा तो जरा समय ज्यादा लग सकता है। उन्होंने कहा आप तो जाओ, आप जाओगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। ये नहीं कहा उसने, ये तो मन में सोचा, कहा यही कि जाओ आप, और सेठ जी को विदा कर दिया। और उसी दिन रात में भगवान की प्रतिमा जी को उठा करके भागने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, एक गलती छिपाने के लिए और दूसरी तो कर ही बैठता है, उसने ये विवेक नहीं रखा कि इसका जो उजाला है वो तो सबको दिख जाएगा। सो हाथ में दबा करके कितने भी ले जाओ, उसमें से जो उजाला था वो निकल रहा था, सो पहरेदारों ने पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि अब क्या करें, चलो सेठ जी अभी कितनी दूर पहुंचे होंगे, घोड़ा गाड़ी से तो जाते बग्घी में होंगे 10-20 किलोमीटर गए होंगे। और वाकई में 10-20 किलोमीटर पर जाकर के सेठ जी ने अपना और जो भी सामियाना था वो लगाकर वहां रात्रि विश्राम किया था। ये पहुंच गए सुबह सुबह कि ये देखो इनके ब्रह्मचारी जी ने जो है और ये चुराली मूर्ति। जैसे ही ब्रह्मचारी जी को देखा सेठ जी ने सब सैनिकों को डांट दिया, क्या कर रहे हो तुम लोग ब्रह्मचारी जी के साथ,
बोले इन्होंने चोरी की, अरे झूठ है, ये चोरी कर ही नहीं सकते, नहीं तो ये मूर्ति तो ला रहे हैं, अरे मूर्ति ला रहे हैं तो क्या चोर हो गए क्या, मूर्ति तो मैंने मंगाई थी, मैं उधर क्या करूंगा, सारे रास्ते में दर्शन कहां से करूंगा, इसलिए मैंने मंगाई थी, इसलिए मेरे लिए ला रहे थे। अब तो वो भी सन्नाटे में आ गए कि हमने बेकार में इनको चोर समझा, चलो माफी मांगो, तो माफी मंगवा दी और सबको विदा कर दिया। और कमरे के भीतर ब्रह्मचारी जी को लेकर धीरे से कान पकड़ लिया कि क्या कर रहे हो, इस वेश में यह कारी शोभा नहीं देता। अब चार लोगों के सामने भी कह सकते थे, लेकिन कैसे कहा जिसमें कि धर्म की भी क्षति ना हो, मोक्ष मार्ग भी दूषित ना हो और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले का दोष भी दूर हो जाए, ऐसी दृष्टि ही निर्मल दृष्टि कहलाएगी भाई। इस तरह यदि हम भी अपने जो साधर्मी हैं, साधर्मी मोक्ष मार्गी सब कहलाएंगे अपन, मुनि आरिका श्रावक श्राविका सब मोक्ष मार्गी हैं, अकेले मुनि महाराज ही मोक्ष मार्गी ऐसा नहीं समझना, नहीं तो अपने मन में यही आता है कि मुनि महाराज जी मोक्ष मार्गी, नहीं मुनि आरिका श्रावक श्राविका यह चतुर्विध संघ है, जो जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखता है वो सब श्रावक है। उस श्रावक के भी अपन दोष दिख जाने पर उन्हें फैलाएं नहीं, मुनि जनों के आरिका माता जी के त्यागी वृत्ति के दोष दिख जाएं तब उन्हें तो फैलाएंगी नहीं, यहां तक कि अपने साधर्मी के भी दोष दिख जावें तो उन्हें फैलाएं नहीं, सिर्फ इतना ही प्रयत्न करें कि कैसे उन दोषों से मेरा वह साधर्मी मुक्त हो जावे, उसके दोषों को प्रमार्जित करने की दृष्टि रहे और उस दृष्टि से उसके दोष ढकते चले जाएं। लेकिन दोषों को ढकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे दोष उसमें बने रहें, और दोषों को उजागर करने का अर्थ ये नहीं है कि उसे नीचे गिराने के लिए, ये बहुत संभाल की चीज है। ऐसी दृष्टि हमारे अंदर उत्पन्न हो कि हम अपना कल्याण करने के लिए देखना चाहें तो अपने दोष देखें और उन दोषों को निकालें, और ऐसे ही किसी के दोष दिख जाएं तो उन दोषों को भी दूर करने के लिए उपाय करें, उन दोषों की निंदा ना करें, उस व्यक्ति के पतन के लिए हम उपाय ना करें बल्कि उसके उत्थान के लिए उपाय करें। इसी भावना के साथ कि हम सबको ऐसी दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो और हमारा जीवन अच्छा बने। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणिया,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे
मूर्ति त्याग के मूर्तिमान शिव पद पंती गुरुवर प्रणाम। मिथ्या तमनाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर वास वे को बानु शिव कानी गए अनुभवताय वे को जीवों के जताय वे को काबू न सताय वे को भव्य और आनी है जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने।
बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी विचारें बातें हमने विचार में ली हैं, पर हमें बहुत सावधानी भी रखनी पड़ेगी कि यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने जा रहे हैं तो हमारे संस्कारवश या वातावरण की वजह से या हमारी अपनी पुरुषार्थहीनता से कहीं ऐसा ना हो कि वे अच्छाइयां हमारे हाथ में आते आते और हम हमारे हाथ से छूट जाएं। जैसे कि किसी के हाथ में बहुत मेहनत करने पर दर्पण आ जाए, पर अगले क्षण थोड़ा सा भी धक्का लगे तो वो दर्पण गिर करके टूट सकता है, ऐसी ही ये दृष्टि की निर्मलता है। एक अंतर्मुहूर्त के लिए हमारी दृष्टि निर्मल हो और उसके बाद हमारी अपनी किसी कमजोरी के कारण या हमारी अपनी पुरुषार्थहीनता के कारण और वो दृष्टि की निर्मलता फिर से भी खो सकती है। हमारी भूलें, हमारी कमियां, हमारी गलतियां, उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमने कल अपनी दूसरे के गलतियों को देखने की आदत बदलने की कोशिश की है, उससे हमें ये लाभ होगा कि हमें अपने पास अपनी गलतियां देखने का समय मिलने लगेगा, क्योंकि जब तक कोई किसी दूसरे की गलतियां देखने में लगा रहे तो फिर उसके अपने गलतियां देखने के पास के लिए उसके पास समय नहीं होता। अब हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें और झांक करके देखें कि मेरे भीतर कहां कोई भूल, कहां कोई कमी रह गई है, उसे हम निकालें। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज विचार। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो जाने के बाद मेरी दृष्टि में निर्मलता आने लगी है, पर सावधानी रखनी पड़ेगी कि कहीं मैं इस देह को ही आत्मा ना मान बैठूं। और आज तक मैंने किया यही है कि अपनी देह को ही मैंने आत्मा मान करके उससे व्यवहार किया है। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नाश। और ऐसा होने के कारण हमने शरीर के सुख दुख को ही अपनी आत्मा का सुख दुख मान लिया। उसके जन्म मरण में ही मैंने अपने आत्मा का जन्म मरण मान लिया। जब तक हम इस भूल से नहीं बचेंगे, तब तक हमारी दृष्टि हमेशा निर्मल बनी रहे ऐसा संभव नहीं है। विनोबा भावे का नाम मैं सैकड़ों दफे लेता हूं तो लोग कहते हैं कि क्या और कोई नहीं मिलता आपको नाम लेने वाला, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये शायद उनको नहीं जानते हैं। अकेले किसी जैन कुल में पैदा होने से कोई सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा कोई तय नहीं, लिखा नहीं। क्योंकि मैंने उनके विचार जब पढ़े और उसमें सबसे शुरुआत में उन्होंने लिखा है कि जो देह और आत्मा को एक ही मानता है उसके जीवन में धर्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती। ये इतनी बड़ी चीज तो कोई दृष्टि की निर्मलता वाला ही कह सकता है, उसके भीतर ही ऐसी अनुभूति हो सकती है। वो कहते हैं कि कितना भी ज्ञान हासिल कर ले कोई, कितना भी बढ़िया व्रत नियम संयम और चारित्र धारण कर ले, लेकिन अगर देह और आत्मा को एक ही मानता है, देह जीव को एक गिने, अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो अभी उसके जीवन में धर्म का प्रवेश ही नहीं होगा। इतनी बड़ी बात कहना हम और आप तक के ख्याल में नहीं आता। हम तो अपनी सुबह से शाम तक सारी क्रियाएं दोहराते हैं, इस देह को ही आत्मा मान करके दोहराते हैं। हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, दूसरे की क्या कमियां देखें अपन बाहरी, अपने भीतर की इतनी बड़ी कमी को हम कब निकालेंगे। हम तो दूसरे के मरण हो जाने पर पजोखा करने के लिए जाते, बाद में रोने के लिए जाते। किस बात के लिए रोने के लिए जाते? उस देह के मर जाने से, या कि चेतना के शाश्वत बने रहने पर हमें कोई म्लानता मन में नहीं आनी चाहिए, दिखनी चाहिए चेतना की शाश्वतता, या कि जड़ देह की नश्वरता को देख करके ही हम चेतना की को भी नश्वर मान करके और रोने गाने लगते हैं। राम कृष्ण के मरण के समय जब उनकी जीवन साथी थोड़ी सी दुखी हुई तो उन्होंने कहा, सुनो मेरा मरण निश्चित है, कुछ ही घंटों की बात है, और अगर तुमने इस देह को राम कृष्ण माना हो तो रो लो, क्योंकि ये मरने वाली है। और अगर इस देह में बैठा हुआ कोई रामकृष्ण मैं हूं तो वो मरेगा नहीं, इसलिए इस देह के मरने के बाद रोना मत। ऐसा हो पा रहा है अपन के जीवन में? चर्चा तो अपन बहुत करते हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, सम्यक दर्शन तो ऐसे जैसे कि हमें बिल्कुल विरासत में मिल गया, लेकिन अभी अभी तो हम जरा से सुख दुख में और जरा से जन्म मरण में ही हर्ष विषाद से ग्रसित हो जाते हैं। दृष्टि की निर्मलता वाला हर्ष विषाद नहीं करता। जब जब भी हर्ष विषाद करें तो माने कि मेरी भूल है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे उस स्वभाव की तरफ दृष्टि जानी चाहिए, तब जाकर के मेरी दृष्टि निर्मल मानी जाएगी या कि मेरा जीवन ऊंचा उठेगा। रागादि भाव ये प्रकट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। और एक बड़ी से बड़ी भूल है आश्रव तत्व के बारे में, सात तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, उनके बारे में हमारी कितनी भूले हैं, मिसकॉन्सेप्शन है हमारे अंदर। राग देश जो कि प्रकट ही हमें दिखाई पड़ते हैं कि हमारे संसार बढ़ाने वाले, हमें दुख देने वाले हैं, उन राग द्वेष को करके ही जो और सुख मान रहा है कि ठीक तो कर रहा हूं, कभी अपनी वीतरागता का उसे ध्यान ही नहीं आता है, ना उसकी अनुभूति होती। जहां थोड़ा कहीं प्रपंच बढ़ता है तो उसमें और शामिल हो जाते हैं, राग द्वेष कहीं हो रहा हो तो उससे बचने की कोशिश नहीं करते। इसका मतलब है अपने वीतराग स्वभाव पर श्रद्धा नहीं है अभी, बल्कि राग द्वेष बढ़ाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। कहीं दो बातें होती हैं तो एक अपनी तरफ से और कह करके उस बात को और बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करते कि भैया क्या कर रहे हो, क्यों प्रपंच में पड़ रहे हो, क्यों राग द्वेष बढ़ा रहे हो, चलो यहां से और भूल जाओ इन सब चीजों को। ऐसा कभी आता मन में? बहुत कम आता होगा कभी, पर अभ्यास करना पड़ेगा इस बात का। आगे कह रहे हैं कि इतने ही नहीं, जब जब मुझे मेरे पाप और पुण्य कर्म का फल मिलता है तो शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करें निज पद विचार। तब तब मैं अपने आत्मा के स्वभाव को फिर भूल जाता हूं। मेरी दृष्टि में जो क्षण भर को अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि चली गई थी वो फिर लुप्त हो जाती है, फिर उस पर पर्दा डल जाता है और मैं फिर सोचने लगता हूं। जब पुण्य का उदय आता है तो बड़ा हर्षित होता हूं और जरा सा पाप का उदय आता है तो विषाद में डूब जाता हूं। भगवान के दर्शन करने तक की सुध नहीं रहती, और वहां जब सुख बहुत आता है तब भी भगवान के दर्शन करने की और अपने आप के कल्याण की सुध भूल जाती। दो ही लोग हैं इस संसार में, दो ही प्रकार के, एक अपने सुख में मशगूल हैं जिनको कि अपने कल्याण की फुर्सत नहीं, दूसरे अपने दुखों से इतने दुखी हैं कि उन्हें वक्त नहीं है, और एक तीसरे प्रकार के हैं अधिकांश लोग जो दूसरे के सुख से दुखी हैं, उनको भी वक्त नहीं है। अपने दुख से दुखी तो जो है सो है ही, दूसरे के सुख से दुखी लोग भी हैं और वे निरंतर ईर्ष्या करके और भगवान से और अपने स्वरूप से विमुख होकर अपना कल्याण कर रहे हैं। जबकि इस संसार में जो सुख दुख है वो सब कर्माश्रित है। क्या ऐसी भूलें हम अपने भीतर की निकालना पसंद नहीं करेंगे? रोके न चा नहीं आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट। जहां जहां अपने कल्याण की आत्मज्ञान की चर्चा होती है तो बड़ा कष्टकारी मालूम पड़ता है। व्रत नियम इत्यादि ग्रहण करने की जहां चर्चा आती है वहां कष्टकारी मालूम पड़ता, जबकि सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषय जय चारित्री इन सब के द्वारा मेरे आने वाले कर्मों का संवर होता है और मैं इन जितने भी संवर के कारण हैं उन सब में कष्ट महसूस करता हूं, ये मेरी संवर तत्व के बारे में भूल कहलाएगी। मुझे सावधानी रखनी चाहिए। आपको कठिन तो नहीं लग रहा? समझना तो पड़ेगा ही है ना, थोड़ी हिम्मत करके समझना पड़ेगा कि भाई हम कहां चूक रहे हैं, क्योंकि अपनी ही गलतियां अपन को खुद समझ में नहीं आती। कोई हम पर उपकार करके हमारी गलती बताए तो हमारा फर्ज है कि उसे सहर्ष स्वीकार कर ले ताकि उस गलती से मुक्त हो जाए, और कोई उद्देश्य नहीं। बताने वाले का उद्देश्य भला होना चाहिए कि वो जीवन को सुधारने के लिए गलतियां बता रहा है, तो हमारा फर्ज है कि अगर बताने वाले ने गलती बताई है तो अपने जीवन को सुधार करके और अपने जीवन को सार्थक बनाए। आचार्य भगवंतों ने कृपा करके हमसे जो भूलें और गलतियां हो सकती हैं वे पहले से बता दी हैं कि ऐसी भूल से बचते रहना, नहीं तो क्षण भर को जो दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हुई है वो मलिनता की तरफ जाने में देर नहीं लगेगी। आप रोके न चाह निज शक्ति खोए और शिव रूप निराकुलता न जोए। इसमें दो चीजें आ गई, क्योंकि इच्छा निरोधा तपा तपसा निर्जरा चाह। निर्जरा तो तपस्या से होती और तपस्या के मायने हैं अपनी इच्छाओं को जीत लेना, और मेरे अंदर रोके न चाह, मैं तो अपनी इच्छाओं को रोकता ही नहीं हूं बल्कि उनकी पूर्ति में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करता हूं। शिव रूप निराकुलता, मेरा स्वभाव तो मोक्ष रूप है जो कि निराकुलता है,
और मैं निराकुलता के काम कम करता हूँ, आकुलता के काम ज्यादा करता हूँ। दिन भर में जरा देखना कि कितने क्षण मेरे निराकुलता के हैं और कितने क्षण मेरे आकुलता के हैं, तो मालूम पड़ेगा कोई एक क्षण है निराकुलता का, बाकी सारे क्षण तो बताइएगा ऐसे कैसे हमारे जीवन में दृष्टि की निर्मलता आएगी। और फिर अगर कोई इस अभ्यास में लगा है और उससे कोई भूल चूक हो जावे तो हम उसे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं, ये विचार करें। कोई निरंतर अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगा है, दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करने में, अपने कल्याण में लगा है, उसकी अगर कोई ऐसी भूल दिखाई पड़ जावे तो उसे इशारा भर कर देना, उसकी निंदा मत करना। और कदाचित कोई चलते चलते गिर जावे तो उसे गिरे नहीं रहने देना, उलाहना मत देना कि काय को चल रहे जब नहीं बनता है। तो ऐसा अपन करते हैं, किसी छोटे से बच्चे ने या किसी नए व्यक्ति ने और अगर जरा सा सुबह से शाम तक का उपवास रख लिया और शाम को चेहरे पर म्लानता आ गई, या कि वाणी से कहने में आ गया कि मुझे तो भूख लगाई है, तो फौरन अपन क्या कहते पाए जाते हैं कि और कर लो, कई कौन ने हती तुमसे, जब होत नहीं है तो काय को करत हो, ऐसा कहते पाए जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि वाह वाह सुबह से अभी तक तुमने इतना आसानी से ये समय व्यतीत कर दिया धर्म ध्यान में, अब तो थोड़ा ही सा रहा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट फियर, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूँ। अपन बैठते हैं, थोड़ी चर्चा करेंगे, कब से तो खाते आए हैं, भूख कभी नहीं मिटी है, जरा और ये रात निकल जाए फिर तो हो ही गया, तुम्हारा उपवास हो गया। पीठ थपथपा के उसको एनकरेज नहीं करते हैं बल्कि उसे गिराने की कोशिश करते हैं। तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो मैं जानू, बात सरल है किसी भी बेकसूर पर दोष लगाना, नहीं कठिन है हर दुर्बल को धमकी देना और डराना, अरे बेबस को क्या और गिराना, उसे उठाओ तो मैं जानू। तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो मैं जानू। जिसकी दृष्टि निर्मल है वो इस तरह से अपने मन का श्रृंगार करता है, वो गिरे हुए को और नहीं गिराता है बल्कि गिरे हुए को उठाता है। दर्शना चरणा द्वापी चलताम धर्म वस्तलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ स्थिति करणम उच्यते। कोई अचानक अपनी श्रद्धा से विचलित होने लग सकता है, कोई आत्मज्ञान से विचलित हो सकता है, कोई अपने आचरण से विचलित हो सकता है, या कि किसी दो चीजों से या तीनों चीजों से विचलित हो सकता है। धर्म वत्सलई है, तब फिर धर्म वात्सल्य पूर्वक उसे पुनः अपनी श्रद्धा में, ज्ञान में, आचरण में स्थित कर देना। स्वयं के बारे में भी हो सकता है कि सुबह हमारे परिणाम अच्छे हों और दोपहर गिरते गिरते शाम होते ना होते और हमारे परिणाम विचलित होने लगे, लिए गए संकल्प का निर्वाह करने का नहीं उसे तोड़ने का मन होने लगे, प्राप्त हुई श्रद्धा से विचलित होने लगे, तो अपने आप को भी संभाल लेना। दोनों ही चीजें हैं, जिसकी दृष्टि निर्मल है वो अपने को भी और दूसरे को भी श्रद्धा से और आचरण से, आज के समय में तो श्रद्धा ही बहुत मुश्किल से जम पाती है, हम तो दूसरे की श्रद्धा पर चोट करने से नहीं चूकते हैं भैया, बल्कि दूसरे की अश्रद्धा उत्पन्न होने लगे तो उस पर श्रद्धा उत्पन्न कराना चाहिए। क्या धरा है मंदिर में आने से, ऐसा कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये कहने वाला कम मिलेगा कि जरा एक बार शिव प्रभु के दर्शन तो करो, हो सकता है कि तुम्हें अपने जीवन के कल्याण का कोई मार्ग सूझ जाए। मैं तो रोज करता हूं, अरे तुम तो रोज करते सो का होगा, तुम्हारा कछु तो नहीं भाव, ऐसा तो फौरन मन में आ जाएगा भाव, लेकिन 20 वर्ष तक माथा टेका होगा, हो सकता कि 20 वर्ष खाली चले गए हों, लेकिन किसी एक क्षण अगर उसी प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन हो गया तो 20 वर्ष की पूरी कीमत वसूल हो गई, पूरा पुरुषार्थ हमारा फलित हो गया। इसलिए यह नहीं सोचना कि मैं वर्षों से जा रहा हूं क्या मिला मुझे, नहीं, निरंतर हम प्रयत्न करें अपनी श्रद्धा को बनाने का और अगर बन गई है तो उसे दृढ़ करने का। जो आचरण हमने स्वीकार किया है, जो संकल्प हमने लिया है, उससे हम विचलित ना हो पाए, दूसरा अगर कोई विचलित हो रहा है तो उसे भी संभालें। और क्यों संभालें, धर्म वत्सलई, क्योंकि धर्मानुराग है, धर्म का स्वरूप मुझे समझ में आ गया है, लेकिन मेरे संस्कार वश उस स्वरूप से मैं विचलित होने लगता हूं, तो सावधान होकर के अपने को और दूसरे को संभाल लेता हूं। भैया जो भटकता है उसे ही संभाला जा सकता है। एक कहीं मैंने पढ़ा था, एक व्यक्ति के यहाँ पर और उसने बकरियां पाल रखी थी। एक शाम को जब वो बकरियां दूध दोहने के लिए गया तो वहां पर देखा कि एक बहुत प्यारा छोटा सा मेमना तो दिख ही नहीं रहा बकरी का। पूछा लोगों से, बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं खो गया होगा। रात 8 बजे लालटेन लेकर के जंगल में ढूंढने निकला है और आवाज देता है तो वो मेमना भी सहमा सा किसी पेड़ के नीचे बैठा था, वो भी आवाज देता है, मिल जाता है। उसे उठाकर अपने कंधे पर रख करके ले आता है तो घर के लोग कहते हैं कि अरे इसका तो कान पकड़ के वो खींच के लाना चाहिए था, कितना तंग किया इसने, ये तो भटक गया था। तो वो क्या जवाब देता है कि भटके हुए को डांट डपट से नहीं, भटके हुए को तो प्रेम से ही हम ठीक रास्ते पर ला सकते हैं भैया। इसलिए कभी कोई या अपन स्वयं भी और सच्चे मार्ग पर चलते चलते और भटक जाएं या कि विचलित हो जाएं या कि गिर ही जाएं, तो अपने को भी और दूसरे को संभालने का भाव अपने मन में आना चाहिए। बहुत सी घटनाएं जीवन में अपन घटित होते देखते हैं, उनसे भी अपन संदेश ले सकते हैं। मैंने तो एक 16 कारण भावना की किताब बहुत पहले भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश हुई थी। अब तो किताबें पढ़ने का लोगों को बहुत कम शौक है, टेलीविजन के सामने कौन किताब खोल के बैठे और कौन अध्ययन चिंतन मनन करे। उसमें पढ़ा था मैंने कि एक व्यक्ति के एक ही बेटा था और वो बेटा भी बिगड़ गया, शराब भी पीने लगा और खराब संगति में भी चला गया। पिता बड़े दुखी रहते लेकिन कभी कुछ कहा नहीं, बेटे से कभी कुछ नहीं कहा। मां जरूर रोज टोकती रहती थी कि क्या करता है तू, तो वो मालूम किससे ज्यादा डरता था, पिता से डरता था, मां से नहीं डरता था। मां तो रोज ही कह लेती, सो कह करके हिसाब किताब चुकता हो जाता, लेकिन पिता ने आज तक नहीं कहा कि क्या करते हो, इसलिए डर लगता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि पिता के मरण का समय निकट आ गया और उस समय पिता ने बुलाया तो घबराया कि अब आखिरी समय कहेंगे तो मान नहीं पड़ेगा, तो पहले से ही जाकर के कहा कि अब आप जब मरण की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपकी सब बात मानूंगा, बस जो दो चीजें मैं करता हूं उनको मना मत करना करने का। उनने कहा कौन बुद्धू होगा जो मना करेगा, आखिरी जाते समय मैंने जिंदगी भर नहीं किया। बड़ा प्रसन्न हुआ तो बोलो और क्या करना है। बोले मैं पूछना ये चाहता हूं कि तू कब कब पीता है शराब। बोले हफ्ते में 2-4 दिन पीता हूं। वो कितने बजे पीते, कहते रात 8 बजे जाता हूं। कहते तुम तो रोज पिया करे मेरे मरने के बाद, लेकिन जरा समय बदल लो, सवेरे 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 5-6 बजे जाकर के पिया करे। उसने कहा इसमें कौन सी बात है, आप तो मैं तो 2-4 बार पीता था, आप तो रोज की परमिशन दे रहे हैं और समय भी ठीक है, वो समय बदल लेंगे। और तुम उनके यहां जाते हो, समझदार हैं आप, उससे ज्यादा और क्या कहना है इसमें, अपने मुंह से वो चीज है ना, तो सुनो कब जाते हो। बोले बस जिस दिन पी लेता हूं उस दिन जाने का मन होता है, तो वही रात 10 बजे के लगभग जाता हूं। बोले वहां भी सवेरे 5 बजे जाना शुरू करो। कहते एक चीज और है पिताजी, जब आपने दो चीजों के बारे में इतनी अच्छी सलाह दी तो एक और है कि मैं जुआ भी खेलता हूं। कब कब? बोले होली दिवाली पर खेलता हूं। कहले रोज खेला करे, लेकिन एक खाता वही रख लो, कितने नामे कितने जमा, कितने लगाए कितने आए, इतने ही हिसाब रख लो। बड़े प्रेम से पिता ने तीनों बातें जो है और उसको समझा दी। पिताजी नहीं रहे, 13 दिन निकले, सबके मन में था कि अब तो 8 बजे इसने जैसे ही तैयार होना शुरू किया तो लोगों को लगा कि ये जाएगा, इसकी आदतें छूटी नहीं, लेकिन वो भूल गया था। और जैसे ही कदम बाहर रखने लगा तो याद आ गया कि पिता ने कहा थे कि 8 बजे क्यों सुबह जाना, कपड़े अपड़े सब उतार के रख दिए। घर के लोग बड़े प्रसन्न कि अच्छा हुआ, लगता है बदल गया। सुबह से पहुंचा जब वो वहां पर जहां शराब मिलती थी तो वहां पर 10-25 लोग कहां कहां पड़े हुए थे खराब जगहों पर, और उनके ऊपर पशु भी मलमूत्र इत्यादि कर रहे थे देख करके। और बड़ा घृणा हुई कि मेरी भी यही दुर्गति होती होगी, पीने के बाद मुझे कौन सुध-बुध रहती, कौन उठा के लाता, कहां पड़ा रहता होऊंगा। और उस दिन के बाद से जाना छूट गया। और एक दिन सोचा कि होके आए वहां पर, पिता ने कहा था 5 बजे जाना, तो जब पहुंचे तो उसने दरवाजे ही खोलने से इनकार कर दिया और बामुश्किल खोला तो उसकी सूरत देख करके और ग्लानी हो गई कि इससे अच्छी तो हमारी जीवन साथी ही है और ये तो उसके पासंग में भी नहीं पड़ेगी। सो अब इसके बाद वहां भी जाना बंद हो गया। साल भर चला जुआ और लिखते रहे कि कितने जमा और कितने नामे। साल भर के बाद हिसाब लगाया तो देखा कि टोटे का धंधा है, लाभ तो कुछ नहीं, हानि हानि ज्यादा है, सो वो भी छूट गया। कैसे छूट गया भैया? जब जब भी हम दूसरे को संभालें तो सावधानी रखें। हरिवंश राय बच्चन ने चार लाइनें लिखी कि इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, कहां मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़ कर जिया, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, कहां मनुष्य है जिसे न भूल शूल सी गड़ी, इसलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो, और कहां मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार के दुलार लो, दुलार के सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार। मुझे कहना तो तीसरी लाइन है। जीवन में हम दूसरे को और अपने को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसके निकट जाकर के उसे प्रेम देना पड़ेगा, अपने आप को भी ऐसा ही और दूसरे के प्रति भी, तब जाकर के और हम सुधार सकेंगे। आज बहुत लोग हैं जो कि दूसरे के सुधारने की बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन साथ में प्रेम भाव भी होना चाहिए साधर्मी के प्रति, तब जाकर के हम उसे सच्चे मार्ग पर लगा सकते हैं। तब ये स्थितिकरण अंग जो कि सम्यक दर्शन के साथ आने वाला है वो अपने जीवन में घटित होते दिखाई पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई अपनी गलती स्वीकार कर ले वे तो उसे पीठ थपथपाना, आज के समय में एक तो अपनी गलती दिखती नहीं है, कोई दिखा दे बे तो स्वीकार करने का मन नहीं होता क्योंकि इंसल्ट फील होती है, अहंकार को चोट पहुंचती है, और अगर कोई सहर स्वीकार कर ले बे तब तो उसके लिए और अधिक आगे बढ़ने में मदद करना। एक छोटी सी घटना वर्णी जी के जीवन की सुनाता हूं, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। हम सबके जीवन में ऐसे सैकड़ों मौके आते हैं जब हमारी श्रद्धा हमारे देखते देखते टूटने लगती है, हमारा ज्ञान हम उससे विमुख होने लगते हैं, हमारे लिए हुए व्रत नियम में शिथिलता आने लगती है। शिथिलता क्या? फिर हम उनको भंग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां हमारे सबके जीवन में सैकड़ों दफे निर्मित होती हैं, तब हम उसके लिए क्या करें? इतना ही कि हम अपनी श्रद्धा को पुनः दूसरे के माध्यम से या कि अपने ही विवेक के माध्यम से फिर स्थित कर लें, दृढ़ता फिर से अपनी बना लें, ऐसे ही अपने टूटे हुए व्रत नियम को फिर से जोड़ लें, उन्हें फिर से संभाल लें। और दूसरा अगर कोई इशारा करे तो हम सहर तैयार हो जाए इसके लिए। वर्णी जी सात प्रतिमा लिए थे उस समय, जबकि घटना है एक दिन प्रवचन सभा में प्रवचन करके उठने लगे तो देखा कि अंगूठी पहने थे वो सोने की, उसमें हीरा लगा था, तो उसमें से अंगूठी में से वो हीरे की कणी गिर गई। तो वर्णी जी ने अनाउंसर को बुलाया कि भैया सुनो, तो अनाउंस कर दो। क्या करने वर्णी जी? कि वर्णी जी की अंगूठी में से हीरा निकल के गिर गयो है, जो उनको मिले सो लौटावे को मन होवे, सो वर्णी जी को लौटा देवे, और न लौटाऊ न होवे तो कांच न समझे, हीरा आए सो 500 से कम में न बेचे। अब बताओ आप ऐसा करवाएगा कोई? ऐसा निष्पयी होगा तो करवाएगा। कह रहे कि अगर लौटाने का मन होवे तो वर्णी जी को लौटावे, और न लौटावे को मन होए तो कांच न समझे, हीरा आए हीरा नंगो है। ऐसा अनाउंस हो गया, वर्णी जी अपने भोजन के लिए चले गए, भोजन करके बाहर निकले, और उतने में उनको अकेले पा करके और एक छोटा सा 10-12 वर्ष का बच्चा कहता कि वर्णी जी आपकी अंगूठी में से हीरा गिर गयो? कहते हाँ भैया गिर तो गयो है। तो फौरन अपना हाथ खोल के कहता कि जे तो नहीं है। कहते भैया आए तो जो ही हमाओ, चले तो ले लो वर्णी जी आपका। वर्णी जी ने जैसे ही अपने हाथ में लिया तो कहता वर्णी जी एक बात कहें आपसे। वर्णी जी कहते भैया तें तो दो कहो, एक क्यों? सरल थे वर्णी जी, सरल व्यक्ति गलती भी कर लेवे तो जल्दी सुधार लेता, स्वीकार कर लेता। तो कहता कि वर्णी जी आप सात प्रतिमाधारी हो, आपको सोने की और हीरा जड़ी अंगूठी शोभा नहीं देती, एक बात और है वन्नी जी, आपने कही कि दो कहो। सुवर्णी जी की आदत थी कि सिर में सुगंधित चमेली का तेल डालते थे, तो वो भी उसने कह दिया कि वन्नी जी आप प्रतिमाधारी हो, साथ प्रतिमा सो आपको सुगंधित चमेली का तेल भी शोभा नहीं देता। वर्णी जी की आंख में आंसू आ गए, उसके सिर पर हाथ रख के कहते कि भैया ते तो हमारा गुरु निकला, ये गलतियां तो मेरे इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता था, बुलाओ उनको। कुंदन लाल सिंगई को उनने अंगूठी दी थी हीरा जड़ी सुजी उनको वापस, और अगर मैं कभी और मगाऊं चमेली का तेल तो इनकार कर देना, कोई मुझे देना मत। अब मैंने उसका आज से ही त्याग कर दिया है भैया। इस तरह दूसरे के जीवन में और अचानक कहीं कोई कमी दिखाई पड़ जाए और वो स्वयं नहीं देख पा रहा हो और कोई उसे दिखा दे, तो उतने ही सहज भाव से उसे स्वीकार कर ले, बताने वाला भी उतने ही सहज भाव से उसे निंदा की दृष्टि से नहीं बल्कि वो गलती दूर हो जाए और पुनः हम सच्चे मार्ग पर स्थित हो जाएं। ऐसी भावना अगर सबके बीच में हो तो बहुत आसानी से हम अपने भीतर की बुराइयों को हटा सकते हैं, दूसरे की बुराइयां भी कम हो सकती और सबके भीतर अच्छाइयां आ सकती हैं। अपन भावना बांधते कि अपन को ऐसी दृष्टि मिले, ऐसा ज्ञान मिले जिससे कि अपन अपने जीवन को अच्छा बना सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पत में विषकंटक बोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों।